नमस्कार भारत, आज है 18 अप्रैल दिन बुधवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की फ्लोरिडा में मुलाकात। पाकिस्तान में 7 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद कराची में हिंसा।
जो लोग थे काफी नाराज थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने उसके जवाब में हवाई फायरिंग किया।
भारत का एक सैनिक भारत विरोधी चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल।
कुछ देर पहले हिजबुल मुजाहिदीन का एक बयान भेजा गया, तो उसमें हिजबुल मुजाहिदीन ने कहा है कि इन्होंने वाकई हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और उत्तर कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह नहीं बताया है कि अमरीका की ओर से किसने मुलाकात की है, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि CIA के निदेशक माइक पोम्पियो ने ईस्टर के मौके पर उत्तर कोरिया की एक गुप्त यात्रा की और नेता किम जोंग उन से मुलाकात की। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ फ्लोरिडा में 2 दिवसीय वार्ता शुरू होने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यह जानकारी दी है। शिंजो आबे ने राष्ट्रपति ट्रंप की हिम्मत की दाद देते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमरीका और उत्तर कोरिया के बीच वार्ता ठोस प्रगति तक पहुंचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोरिया प्रायद्वीप में जापान की सुरक्षा चिंताओं का भी समाधान किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के राजदूत बशर जाफरी ने कहा है कि रासायनिक हथियारों पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन OPCW का जांच दल बुधवार को डूमा में संदिग्ध रासायनिक हमले के स्थल का दौरा करेगा। पश्चिमी देशों का कहना है कि राजधानी दमिश्क के पास 2 सप्ताह पहले हुए रासायनिक हमले में दर्जनों लोग मारे गए थे, जबकि ईरान और रूस का कहना है कि ऐसा कोई रासायनिक हमला नहीं हुआ है। इससे पहले सीरियाई सरकारी टीवी पर कहा गया था कि जांच दल डूमा पहुंच गया है, लेकिन अब राजदूत ने बताया है कि अब तक सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा दल को ही डूमा जाने दिया गया है। इस संदिग्ध रासायनिक हमले की प्रतिक्रिया में बीते शनिवार को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया के 3 सैन्य ठिकानों पर मिजाइलें दागी थीं। अमरीका और फ्रांस ने रूस और सीरिया पर हमले के सबूत मिटाने के आरोप भी लगाए हैं। रासायनिक और बायोलॉजिकल हथियारों पर स्वतंत्र विशेषज्ञ डॉ रिचर्ड लूथरी बता रहे हैं कि डूमा में जांचकर्ता क्या तलाशेंगे। उन्होंने कहा, वो किसी भी तरह के हथियारों के सबूत तलाशने के अलावा पर्यावरण से जुड़े सैंपल लेंगे और वहां मौजूद लोगों से बात करेंगे। संभवतः वो लोगों से भी सैंपल लेंगे ताकि परीक्षण करके ये पता कर सके कि 10 दिन पहले रासायनिक हमला हुआ था या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था अगले 2 साल में 4% की दर से बढ़ सकती है। ये बीते 7 सालों में सबसे मजबूत पूर्वानुमान है और इसमें जापान, अमेरिका और यूरोजोन की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की उम्मीद जाहिर की गई है। हालांकि IMF ने चेताया है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक युद्ध से आर्थिक खतरे भी हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था का कहना है कि वो माली में अंतर सामुदायिक हिंसा में बढ़ोतरी से चिंतित है। ताज़ा हिंसा के बाद करीब 3,000 लोगों को सीमा पार कर पड़ोसी देश बुर्किना फासो जाना पड़ा है। संस्था के मुताबिक फरवरी के बाद से माली के मोपती इलाके में डोगोन और पेउल समुदाय के बीच हुई हिंसा में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। माली के मध्य क्षेत्र में सरकार की अनुपस्थिति की वजह से हथियारबंद दलों की लूटपाट बढ़ी है और अपने अपने समुदायों की रक्षा के लिए लोगों को हथियार उठाने पड़े हैं। माली अभी भी देश के उत्तरी इलाके में साल 2012 में हुए जेहादी विद्रोह से उबर रहा है। इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के 11,000 शांति बल तैनात हैं, जिन पर अलकायदा से जुड़े चरमपंथी हमला करते रहते हैं। कॉफी शॉप चेन स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को नस्लीय जागरूकता में प्रशिक्षित करने के लिए अगले महीने अमेरिका में अपने 8,000 कैफे एक दोपहर के लिए बंद रखेगा। फिलाडेल्फिया में एक स्टारबक्स कैफे से 2 काले लोगों की गिरफ्तारी के बाद स्टारबक्स को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और इसी के मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है। ये युवक कैफे में बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने समाचारों में सुना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने फ्लोरिडा में मुलाकात की है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात की वजह और दोनों के बीच क्या बात हुई है, जानने के लिए हम सीधे चल रहे हैं वॉशिंगटन, जहां से बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। इरम, आप हमें सुन पा रही हैं?
जी बिल्कुल।
यहाँ भारत में सुबह के 6:30 बज चुके हैं, वॉशिंगटन में क्या समय हुआ है इस समय?
वॉशिंगटन में इस वक्त 9:05 हो रहे हैं रात के।
बहुत अंतर है दोनों के समय में। ये बताइए कि राष्ट्रपति ट्रंप और शिंजो आबे की ये जो मुलाकात हुई है वो अचानक हुई है या पहले से तय थी ये मुलाकात?
जी बिल्कुल, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2 दिन के लिए अमेरिका आए हुए हैं और ये तयशुदा ट्रिप था उनका। और इस ट्रिप में हमने ये देखा कि फ्लोरिडा जो अमेरिका की रियासत है, वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर आबे हैं, उनको वेलकम किया। और उनसे बातचीत में उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अमेरिका की सरकार के जो हाई ऑफिशल्स हैं, आला सरकारी लोग हैं, उनकी बातचीत हो रही है नॉर्थ कोरिया के सरकार के आला ऑफिशल्स के साथ। और उस बातचीत में ये तय किया जा रहा है कि कब प्रेसिडेंट ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उनके दरमियान मुलाकात तय की जाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि अगर बातचीत सही गई तो हो सकता है कि जून के शुरू में या जून से ज़रा पहले मुलाकात ये तय पाए, जिसमें अमेरिका जो है अपनी बातें नॉर्थ कोरिया को बताएगा। और जापान का जो एक हमें सामने आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं, जापान को ये खौफ है कि अमेरिका कहीं जो है नर्म अप्रोच ना ले ले नॉर्थ कोरिया की तरफ, क्योंकि जापान ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया जो है अपना सारा मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करे, जिसके बाद उससे कोई बातचीत आगे बढ़े।
इरम, ये बताइए कि हाल फिलहाल में सीरिया में जो कार्रवाई हुई है उससे इस मुलाकात का क्या कुछ लेना देना है?
देखिए, सीरिया में जो कार्रवाई हुई वो हमें पता है कि यूके, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर जो है इस मिलिट्री स्ट्राइक को, इस कार्रवाई को अप्रूव किया था। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें कोई ऑफिशियल सतह पर तो कोई बातचीत इस बारे में या इस हवाले से क्लियर कोई बातचीत सामने नहीं आई है, लेकिन क्योंकि हमें ये पता है कि जापान जो है वो US का बहुत अहम साथी है, तो यकीनन हो सकता है कि बातचीत में जापान को ये बताया गया हो कि ये कार्रवाई क्यों की गई है। लेकिन जापान जो है इस मामले पर अमेरिका के पीछे खड़ा है और अमेरिका सीरिया में जो भी अप्रोच लेता है वो अपने जो मगरबी साथी हैं, वेस्ट के जो साथी हैं, उनसे मिलकर जो है मिलिट्री स्ट्राइक भी किए गए और आगे भी जो लाहे अमल या आगे भी जो अप्रोच ली जाएगी वो अपने सारे साथियों से वो मिलकर ही लेगा।
बहुत शुक्रिया। ये थी वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी। श्रोताओं, क्या आपको जैनब अंसारी का नाम याद है? 6 साल की इस बच्ची के साथ इसी साल जनवरी में बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान में एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में कराची में प्रदर्शन हुए हैं। पूरा मामला जानने के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने कराची में बीबीसी उर्दू सेवा के संवाददाता रियाज सोहेल से संपर्क किया।
कराची का एक इलाका है मंगोपी, जहाँ से एक 7 साल की बच्ची है राबिया मक्सी, वो लापता हो गई थी। शाम को कचरा कुंडी से उनकी लाश मिली, जिसके बाद उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि बच्ची से ज्यादती की गई है, रेप किया गया है और उसके बाद उनका गला घोंटकर जो है हलाक किया गया है। जो उनके वालदा हैं उनका ये कहना है कि दोपहर को 2 बजे वो अपने खाला के घर गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई, उसके बाद वो रात भर उसकी तलाश करते रहे। पुलिस ने उस बच्ची की लाश जो है वो उनके फैमिली के हवाले की थी, उसके बाद लाश समेत एहतजाज किया गया। उस दौरान जो लोग थे काफी नाराज थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने उसके जवाब में हवाई फायरिंग, जिसके नतीजे में 3 जो लोग हैं वो घायल हो गए और उसके बाद उसमें से 1 जो है वो बाद में फोत हो गया। पुलिस का कहना है कि इस वाकये में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है।
अभी हाल में देखने में आया कि पाकिस्तान में जिस तरीके से कसूर की घटना हुई, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह प्रदर्शन हो रहे हैं इन सब घटनाओं को लेकर।
कसूर से पहले भी कराची में जो स्ट्रीट ऑन, जो जस्टिस ऑन स्ट्रीट का जो पुराना मामला है, गुज़िश्ता 5-7 सालों से हमने देखा जो सड़क पर ही इंसाफ करना चाहते हैं, तो इस हवाले से ये पुरतशद वाकयात होते हैं। और दूसरा जो ये मामला है कि बच्चों के वाकयात अब ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो लोगों में जज्बात ज्यादा नजर आते हैं और नतीजे में इस किस्म के जो रिएक्शन भी नजर आते हैं।
पाकिस्तान में 7 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद कराची में हिंसा, खबर पर और जानकारी दे रहे थे कराची से ही बीबीसी संवाददाता रियाज सोहेल। नमस्कार भारत में अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां कठुआ में 8 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के बाद राजनीति काफी गरमाई हुई है। इसी गरमाई राजनीति के बीच खबरें आ रही हैं कि राज्य के मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हो सकते हैं, खास तौर पर उन मंत्रियों में जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में शामिल है। इस खबर पर और जानकारी के लिए श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। माजिद जहांगीर, ये बताइए मामला क्या है, ये इस्तीफे की बात कहां से आई है निकलकर?
देखिए संदीप जी, ये एक्चुअली पिछले दिनों जब जो कुठवा में जब वाकया हुआ और उसके बाद बीजेपी के 2 मंत्रियों ने एक रैली में पार्टिसिपेट किया था और जिसके बाद पार्टी ने उसका सख्त एक्शन लिया कि जो आरोपियों के समर्थन में रैली की गई थी, और उसके बाद जो राम माधव है इनके जम्मू कश्मीर प्रभारी है वो जम्मू आ गए इस पूरे मुद्दे को देखने के लिए। और उसके बाद जो 2 मंत्री थे बीजेपी के, चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा, और उनसे फोर्स्ड रिजिग्नेशन लिया गया। और उसकी उसी दिन, ये सैटरडे की बात है, जो बीती सैटरडे के दिन जब मीटिंग हुई जम्मू में बीजेपी के टॉप ब्रॉस और आरएसएस के टॉप ब्रॉस के साथ, और ये फिर फैसला लिया गया कि पूरे इस बीजेपी का जो मंत्रिमंडल है उसको रिशफल किया जाए और तमाम जो बीजेपी के मंत्रियों से उसी दिन कहा गया था कि वो सारे रिजिग्नेशन दे दें, और वहीं से ये प्रोसेस शुरू हो गया।
माजिद साहब, ये बताइए कि ये बदलाव इस बदलाव की वजह से क्या गठबंधन सरकार में किसी तरह का खतरा, किसी तरह की चिंता वाली बात है?
नहीं देखिए, अभी तक तो ऑफिशियल वर्ड कोई नहीं मिला इसमें। हमारी भी बात हुई कल देर रात बीजेपी के 1-2 लोगों से, और उन्होंने भी इस थ्रेट को जो है बिल्कुल डिनाई किया इस बात से कि गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ एक रिशफल का मामला है। क्योंकि बीजेपी में कुछ ऐसे मंत्री जो हमें सूत्रों से पता चला, इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी में कोई ऐसे मंत्री है जिनकी परफॉर्मेंस से पार्टी खुश नहीं थी, और अब ये जो मास रिजिग्नेशन की बात आ गई, ये इसलिए किया गया कि अगर 1-2 लोगों से ही अब उनको हटाया जाता तो शायद पार्टी के अंदर एक इनफाइटिंग शुरू हो जाती और उससे एक गलत मैसेज बाहर जाता।
लेकिन माजिद साहब, मुझे नहीं लगता कि चुनावी राजनीति से इनकार किया जा सकता है।
बिल्कुल, चुनावी राजनीति से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कठुआ का जो मसला है उसने पूरे इस क्योंकि वो एक मजहबी लाइनों पे वो पूरा मामला आ चुका है, कश्मीर और जम्मू वर्सेज हो गया है। तो इसमें भी अब क्योंकि अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें जब से ये गठबंधन सरकार बनी है, बीजेपी ने जो वादे किए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनकी जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी है और पीडीपी की कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो दोनों जगहों पर दोनों पार्टियों की जो जमीन है वो बिल्कुल जरखेज नहीं हुई है जो वादे किए गए थे। और अब बीजेपी शायद कठुआ रेप के पीछे छुपना चाहती है और इस पूरे मामले को अब एक रिशफल का नाम दिया जा रहा है।
ये थे श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर। भारतीय सेना के एक जवान इदरिस मीर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें बताया गया है कि वे चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो चुके हैं। श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं।
जी देखें, ये जो लड़का है इसने ग्रेजुएशन के दौरान ही पढ़ाई छोड़ दी थी, इसने उसके बाद सेना में भर्ती हुआ था। ये सेना की एक सब्सिडियरी विंग है जो जम्मू कश्मीर में, जिसको जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी जैकली कहा जाता है, वो भी आर्मी का ही यूनिट होता है, उसमें इसकी तैनाती नॉर्थ कश्मीर में थी। लेकिन वहां पे पुलिस का ये कहना है कि इन्हें अचानक ट्रांसफर किया गया था झारखंड, जहां वो जाना नहीं चाहते थे। तो इसके कुछ ही दिन बाद वो लापता हो गए, और उस वक्त जो उच्च अधिकारी हैं आर्मी के, उन्होंने भी बताया कि ये सिर्फ अनऑथराइज्ड एब्सेंस का केस है, सिर्फ लापता हुआ है और हमें कोई इस बारे में इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है। लेकिन अचानक से जो है सोशल मीडिया पे इनकी बंदूक थामे हुए इनकी तस्वीर आ गई, और उस पे सामने लिखा था हिजबुल मुजाहिदीन 15 अप्रैल को ज्वाइन किया है, और आर्मी ने कहा कि हमें स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है और हम पता कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि उन्हें पूरी तरह से शुबा है कि इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है हिजबुल मुजाहिदीन को। तो कुछ देर पहले हिजबुल मुजाहिदीन का एक बयान यहाँ एक वायर एजेंसी को भेजा गया सर्कुलेशन के लिए, तो उसमें हिजबुल मुजाहिदीन ने इनको ओन किया हुआ है और कहा है कि इन्होंने वाकई हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया है। जब मैंने बात की यहाँ पे कुछ आर्मी अधिकारियों से तो उनका कहना था कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है, क्योंकि उन्होंने फिगर्स बताई, कहा कि 3 साल में कम से कम 1000 कश्मीरी नौजवानों ने आर्मी और दूसरी फोर्सेज ज्वाइन की हैं। तो ये अपने नवियत का एक वाकया है, सिंगुलर इंसिडेंट है, तो इसको ये डाउन प्ले कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ही ये कह रही है कि ये वाकई, चूंकि इस वक्त मिलिटेंसी का ट्रेंड चला हुआ है खासतौर से साउथ कश्मीर में, कोई 100 से ज्यादा लोग पिछले 1.5 साल में उन्होंने मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन की हुई हैं और ऑपरेशन ऑल आउट में 250 से ज्यादा शरणपंथी मारे गए हैं। तो एक तरह का एक नया वेव है, हम लोग भी इसको 2010 से देख ही रहे हैं। जो भी कुछ 2010 से 2016 में हुआ, 7-8 साल में जो कुछ होता है उसका पैटर्न एक रहा है। जैसे मान लीजिए एक लोकल चरमपंथी है, उसी गांव का है, उसी गांव में एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर के बाद हजारों लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं, उसके फ्यूनरल में जमा होते हैं, उन पे फायरिंग भी होती है, उसमें सिविलियन किलिंग्स होती हैं, तो उससे यूथ में जो है एक जो रिवेंज का एक सेंस है, बदले की भावना जो है वो जागती है, तो उसके बाद वो अचानक जंगल में चले जाते हैं। हमने देखा 2016 में कई लोग जो है एक मिलिटेंट के फ्यूनरल पे जब उनका एक साथी गन सल्यूट के लिए आया तो उसके पीछे कोई 20-40 लड़के भागे और उनको कहा कि हमें अपने साथ ले जाओ, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये एक तरह का मतलब बहुत बड़ा मसला है। यहाँ अलगाववादियों से भी हमने ये पूछा कि ये तो एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है, आप इस बारे में क्यों नहीं कोई बयान देते हैं? तो उनका कहना है कि चूंकि सरकार ने उनकी पॉलिटिकल स्पेस चोक कर दी है, उन्हें नजरबंद रखा जाता है, उन्हें लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है, तो यही वजह है कि लोग जो है एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं।
भारत का एक सैनिक भारत विरोधी चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ, जानकारी दे रहे थे रियाज मसरूर। उधर मध्य प्रदेश में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस खबर पर और जानकारी के लिए भोपाल में हमारे सहयोगी सूर्य नियाजी को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। सूर्य, बताएं कहाँ हुई है यह दुर्घटना, कैसे हुई है और कितने लोगों के मारे जाने की खबर है?
देखिए, ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मंगलवार की रात को तकरीबन 9:30 बजे सोन नदी के पुल से बारातियों से भरा एक मिनी ट्रक था जो तकरीबन
लगता है टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच रुख कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर तेज हवाओं की वजह से कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कोलकाता में BBC संवाददाता अमिताभ भट्टाशाली को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अमिताभ, ये बताइए कि तूफान की तेज हवाओं की कोई चेतावनी जारी की गई थी या मौसम अचानक करवट बदल गया?
ये देखिए संदीप, चेतावनी तो दी गई थी सुबह से ही, IMD की तरफ से ये चेतावनी।
लगता है इनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है, दोनों के पास हम वापस पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज बुधवार का दिन है, ये दिन बहुत मुमकिन है कि रैलियों के नाम रहे। एक तरफ दलित संगठन भीम आर्मी, जहां दलितों के खिलाफ कथित अत्याचारों को लेकर दिल्ली में मौन प्रदर्शन करने जा रही है, वहीं परशुराम जयंती के मौके पर देश भर में कई रैलियां होने वाली हैं। BBC संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
एक तरफ दलितों पर अत्याचार के खिलाफ रैली, तो दूसरी ओर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की जयंती पर रैली। इस साल मार्च के आखिर में रामनवमी पर भी कई शहरों में रैलियां निकाली गई थीं और उसके तकरीबन एक सप्ताह बाद 2 अप्रैल को दलित समाज ने भारत बंद बुलाया था। ये बंद SC ST कानून को कथित तौर पर कमजोर करने के खिलाफ बुलाया गया था। इस बंद के दौरान काफी हिंसा हुई थी। भीम आर्मी का कहना है कि वो भारत बंद के दौरान दलितों के साथ हुई ज्यादती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। भीम आर्मी के रक्षा समिति के संयोजक संजीव माथुर ने BBC से बातचीत में कहा,
ये जो हमारा पहली मांग है वो ये है कि जो 2 तारीख को लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी झूठी गिरफ्तारी, फर्जी मुकदमे और गिरफ्तारियां हो रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। हम चाहते हैं कि वो सारे केस वापस हो। दूसरा मांग है कि ये जो कठुआ में और उन्नाव में रेप की घटना या इस तरह की जहाँ पे भी घटनाएं हो रही है, जहाँ पे सत्ता का संरक्षण है, उन सत्ताधीशों और संरक्षणधारियों को भी सजा मिले। और तीसरा है कि चंद्रशेखर और चंद्रशेखर के साथ जो अन्य 2 साथियों को NSA में डाला हुआ है सरकार ने, उनकी तुरंत रिहाई करे और केस हटाए, क्वेश्चन करे।
रामनवमी, हनुमान जयंती के बाद अब परशुराम जयंती पर रैली। परशुराम जयंती पर रैली निकालने का कारण पूछने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष गोविंद कुलकर्णी कहते हैं,
जो पुरुष राम हमारे आद्य भगवान विष्णु के अवतार है, भगवान जी का आदर्श हमारे नया पीढ़ी के लिए मिले इसलिए भगवान जी का पूजन किया जाता है।
रामनवमी के दौरान हुई रैलियों में पश्चिम बंगाल और बिहार में काफी हिंसा देखने को मिली थी। परशुराम जयंती पर भी ऐसी परिस्थितियां ना बने इसके लिए किस बात का ख्याल रखा जा रहा है, इस पर कुलकर्णी कहते हैं,
कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और लिया गया है और उनको बताया गया है ठीक से ऐसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पुलिस का परमिशन और पुलिस का प्रोटेक्शन भी उसके साथ में लिया गया है।
परशुराम जयंती और भीम आर्मी की रैली एक दिन पड़ने पर किसी असहज स्थिति से कैसे बचा जाएगा, इस सवाल पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन बताते हैं कि अगर कोई गलत स्थिति पैदा होती है तो वो राजनीतिक कारणों से होगी।
इस शोषण के खिलाफ खड़े होने का समय है, जो साथी अमन पसंद है, संविधान पसंद है, वो लोग खड़े हो जाएं और जहाँ जहाँ भी खड़े हों वहीं से आवाज दें। सीन के लिए होगा तो पॉलिटिकली होगा और हम लोग तो पहले से शांति प्रिय हैं, बिल्कुल जिसे जो करना है वो करे, हम तो उन भाइयों के लिए कर रहे हैं जो हमारे बीच नहीं रहे। किसी का त्योहार है तो त्योहार में क्यों इंटरफेयर करना, संवैधानिक अधिकार है उनका, वो कर सकते हैं।
गौरतलब है कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण को सहारनपुर में हिंसा भड़काने के आरोप में पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में है। भीम आर्मी का कहना है कि चंद्रशेखर को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है लेकिन सरकार उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई है। भीम आर्मी इस रैली से दलितों के कितने मुद्दे उठा पाएगी ये तो आज होने वाली रैली से ही पता चल पाएगा। मोहम्मद शाहिद, BBC दिल्ली।
शीशे के उस पार बैठकर स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे दीपक जसरोटिया इशारा कर रहे हैं कि भोपाल से सूर्य नियाजी और कोलकाता से अमिताभ भट्टाशाली से दोनों से संपर्क दोबारा कायम हो गया है। पहले चलते हैं भोपाल। सूर्य, आप बता रहे थे कि सड़क दुर्घटना में कुछ बस गिरी है, ट्रक गिरा है, 20-25 लोगों के मारे जाने की खबर है, क्या जानकारी थी?
देखिए, इसमें जो है ये सीधी जिले में जो सोन नदी है वहां पर मिनी ट्रक था जो 70-80 फीट नीचे गिरा, इसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग घायल हुए हैं और सभी का इलाज जो है सीधी के जिला अस्पताल में चल रहा है। जो कलेक्टर है दिलीप कुमार, उन्होंने 21 लोगों के मरने की पुष्टि की है। तो ये जो जानकारी जो हमें मिली है उसके मुताबिक ये मिनी ट्रक जो था ये चित्रांगी से बारात लेकर जा रहा था, तभी सोन नदी के पुल पर यह ट्रक बेकाबू हो गया और नदी में जा गिरा। अभी घटना की सही वजह अधिकारी बताने की स्थिति में नहीं है इसके कारण क्या थे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया और अभी भी यह बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि घायलों में कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया। वहीं उन्होंने मरने वालों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की।
भोपाल से स्थानीय पत्रकार सूर्यनियाजी। और अब दोबारा अमिताभ भट्टाशाली के पास चलते हैं, कोलकाता। अमिताभ जी, आप बता रहे थे तेज हवाओं के कारण कुछ लोग मारे गए हैं कोलकाता और उसके आसपास, मौसम अचानक बदला या क्या हुआ, कैसे, कुछ चेतावनी वगैरह दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से? हेलो भाई दिलनवाज, लगता है कि टेलीफोन की लाइन आजकल बहुत ज़्यादा कटने लगी हैं। अखबारों की सुर्खियाँ अब बताने का वक्त आ गया है।
जी बिल्कुल, अखबारों की सुर्खियाँ बताते हैं और ये बिल्कुल सही है कि आजकल टेलीफोन लाइनों में बहुत दिक्कत है, खास करके जब से टेलीफोन कंपनियों में जो है प्राइस वॉर शुरू हुआ है। आज के सभी अखबारों में ATM से पैसे नदारद होने की खबरें हैं। पंजाब केसरी लिखता है नोटबंदी जैसे हालात, दैनिक जागरण का शीर्षक है ATM हो गए कैशलेस, वहीं न भारत टाइम्स का शीर्षक है नोटबंदी, 11 राज्यों में ATM खाली, 500 के नोट 5 गुना बढ़ाए जाएंगे। और इसी खबर पर दैनिक भास्कर बता रहा है कि दिल्ली समेत 10 राज्यों में ATM सूखे, 13 दिन में 5 गुना ज़्यादा नोट निकाले गए और इतनी ही तेज़ी से छपाई शुरू होगी। अलग अलग अखबारों में ये खबर अलग अलग तरीके से है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने,
दिलनवाज मैं बीच में रोक रहा हूँ, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि 2000 का नोट अब पहले की तरह उतना नहीं दिख रहा जितना पहले दिखता था।
जी बिल्कुल संदीप, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया ये बता रहा है कि जो कैश क्रंच है, ATM से जो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि 2000 के नोट की जमाखोरी शुरू हो गई हो, क्योंकि 2000 का नोट एक बड़ी मुद्रा होती है। एक नोट में 2000 रुपये जो जमाखोर हैं, मान लीजिए 100 नोट भी किसी ने अपने पास रख लिए तो 2 लाख रुपए हो गए। और यही आज का अखबार बता रहा है कि 2000 का नोट बाजार में दिख नहीं रहा है, तो जो जिस काले धन को ख़त्म करने की बात की गई थी, कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट सवाल उठा रही कि वो काला धन फिर से जो है अर्थव्यवस्था में बन रहा है। इसके अलावा एक और खबर आज अखबारों में है, पहले पन्ने पर द हिंदू बता रहा है कि गुड़गांव के पास 2 महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया और उनके साथ जो पुरुष था उसकी भी हत्या कर दी गई। इन 3 लोगों की हत्या कर दी गई है और एक 8 साल की बच्ची के बलात्कार से जुड़ी खबर भी लगभग सभी अखबारों के पहले।
दिलनवाज, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, कल के समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी ये बात श्रोताओं ने भी महसूस की होगी और आज भी उनको ऐसा लग रहा होगा कि अपराध की खबरें ज्यादा आप बता रहे हैं, क्या ये आप खबर इस तरह की नजर आपको आ रही है या
जी बिल्कुल देखिए
तमाम अखबारों में ज्यादा खबरें छप रही हैं आजकल?
जी जैसे अभी ये मेरे हाथ में हिंदुस्तान टाइम्स है, अनदर चाइल्ड 7 ईयर रेप्ड एंड किल्ड एट वेडिंग इन एटा, तो
उत्तर प्रदेश की,
और ये खबर सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर नहीं है, बाकी अखबारों के पहले पन्ने पर भी ये खबर है। तो एक बात ये भी हो सकती है कि कठुआ बलात्कार कांड के बाद से जो गैंगरेप या रेप की खबरें हैं उन्हें अखबार प्रमुखता से पहले पन्ने पर ला रहे हैं। जी संदीप, एक और खबर है, UIDAI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि गूगल जैसी कंपनियां चाहती हैं कि आधार नाकामयाब हो जाए।
इसकी कोई वजह बताइए, कुछ थोड़ा विस्तार से बताइए।
जी आधार का बचाव करते हुए UIDAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि प्राइवेट कंपनियां जिनमें गूगल और स्मार्ट कार की कंपनियां और इंटरनेट कंपनी गूगल शामिल हैं, वो चाहती हैं कि 12 अंकों की संख्या वाला बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम आधार नाकाम हो जाए, क्योंकि ये जो है उनके डाटा कलेक्शन को, जो ये कंपनियां डाटा कलेक्ट करती हैं इस पर इसको रोक देगा ये आधार जो है। और दिल्ली में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के टकराव की एक और खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। केंद्र सरकार ने अब दिल्ली सरकार के 9 सलाहकारों को हटा दिया है। ये खबर आज के नवभारत टाइम्स के अलावा और भी अखबारों में है। और द हिंदू बता रहा है कि लॉ कमीशन ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने का समर्थन किया है। जो व्हाइट पेपर ड्राफ्ट किया गया है उससे ये संकेत द हिंदू ने लिए हैं और आज अखबारों के पहले पन्ने में इस खबर को जगह दी है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज। अभी देखने वाली बात है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। बढ़ते हैं खेल की खबर की ओर। भारतीय मुक्केबाज गौरव सोलंकी ने हाल ही में खत्म हुए राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 52 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उनका पहला पदक था। उनसे बात की है सूर्यांशी पांडे ने।
आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, 52 कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में आपने ये पदक जीता, किस तरह की तैयारी आपके लिए थी?
जी तैयारी जिस तरह कंपटीशन था, हम काफ़ी प्रिपेयर थे, हमने काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी किए थे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था, तो ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, हम कॉन्फिडेंट थे कि हम ये ज़रूर कर दिखाएंगे।
लेकिन आप अगर इंस्पिरेशन किसी को मानते हैं बॉक्सिंग की दुनिया में, तो वो कौन सा खिलाड़ी है जिसको आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं?
जी अपनी दुनिया के सभी हीरो होते हैं और मैं भी ज़रूर किसी ना किसी से, हर किसी से इंस्पायर होता हूँ, हर सीखता हर किसी से हूँ, तो मैंने भी छोटी छोटी चीज़ें हर किसी ना किसी से सीखी हुई हैं।
गौरव सोलंकी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप, एक होता है कि एक इंसान फर्श से ऊपर उठता है, आप अपनी कहानी बताइए, आप किस तरह से बॉक्सिंग में आए और एक गांव से आपने इस अखाड़े को अपना करियर बना लिया, तो किस तरह से आप यहां पर आए, बॉक्सिंग को किस तरह से आपने चूज किया?
जी नॉर्मली जैसे स्कूल में गेम्स होते हैं मैं वैसे गेम्स खेला करता था, और खेलते खेलते जब मेडल्स आने लगे तो रुचि और बढ़ने लगी, तो फिर मैंने।
आप कहाँ से, कौन से गाँव से?
मैं फरीदाबाद से हूँ, बल्लभगढ़ से।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़।
जी तो और रुचि बढ़ने लगी तो फिर मैंने इसे ही चुन लिया कि मैं बॉक्सिंग ही करूँगा और इसमें मुझे हाईएस्ट लेवल तक जाना है।
तो इसमें आपके परिवार वालों का साथ था?
बिल्कुल, उनका हर तरह से सपोर्ट रहा है, उनको जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्होंने वो ला के दी है, तो उनका सबसे ज़्यादा उनका ही सपोर्ट रहा है मुझे।
हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में ज़्यादातर शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं और बॉक्सिंग में अब आना शुरू हुए हैं। विजेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने भी बॉक्सिंग में बहुत अच्छी तरह से इंडिया को जो है वो प्रस्तुत किया, तो अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स अब खत्म हो गया है, सोने का मेडल आपके हाथ में है, आगे की क्या तैयारी है?
आगे एशियन गेम्स आ रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है हम इस पोडियम फिनिश को दोबारा पोडियम फिनिश में और तब्दील कर सकें। सब मेहनत इसीलिए करते हैं कि एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, तो मैं भी उसी पथ पे हूँ और जरूर आगे, अभी काफ़ी लक्ष्य बाकी हैं तो उन पे हम और काम कर रहे हैं।
भारतीय मुक्केबाज गौरव सोलंकी से बात कर रही थी सूर्यांशी पांडे। वक्त बचा नहीं है मुख्य समाचारों का, हम आपसे लेंगे यहाँ पर विदा। आज इतना ही। नमस्कार भारत में कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया विभुराज ने। अगली मुलाकात होगी दिन भर में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।